أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين أما بعد محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نو باضافہ دو جو گیارہ علامتیں ہیں ان میں تین علامتیں سب سے بیسک اور بنیادی علامتیں ہیں. دوسری نو باضافہ دو جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تو دو دراصل علامتیں نہیں ہیں, وہ دوسری علامتوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن نو علامتوں میں تین علامتیں سب سے بیسک اور بنیادی ہیں, دوسری جو چھ علامتیں ہیں وہ انہی تین علامتوں کے ذریعے بنتی ہیں. وہ تین علامتیں جو سب سے بیسک اور بنیادی تھیں ان میں سب سے پہلی علامت ہے فتحہ, جس کو اردو میں ہم زبر کہتے ہیں, جس کی آواز ہے آ. پرانے زمانے کا جو ٹپیکل طریقہ تھا, جو سنتی طریقہ تھا ہم روحانی قرآن سکھانے کا اور تعلیم قرآن کا, تو اس میں بچوں کو یہ سکھاتے تھے الف زبر آ, بے زبر با, تے زبر تا, سے زبر سا. میں نے عرض کیا کہ اپنے زمانے میں ایک بہترین نہج اور بہترین روش تھی ہے, لیکن آج کے زمانے میں ایک اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے جو آسان بھی ہے کہ ہم فتحے کی آواز سے مانوس کر دیں. جو شخص بھی فتحے اور زبر کی آواز سے آشنا ہے, زبر کی آواز کیا ہے؟ آ ہے. زبر کی آواز ہندی میں ہمارا جو آ ہوتا ہے جس کو زیادہ ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے ہیں, ایکسٹینڈ کر کے نہیں پڑھیں گے, آ نہیں, آ. اکثر لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جانتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے آشنا ہے, لیکن وہ خطا جو کرتے ہیں وہ ان کی خطا کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں الف ہے اس کو زبر پڑھتے ہیں, جہاں زبر ہے اس کو الف پڑھتے ہیں, جہاں کھینچنا نہیں ہے وہاں کھینچ دیتے ہیں, جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں یعنی جہاں ملا یعنی کھینچ کر ایکسٹینڈ کے ساتھ مد کے ساتھ پڑھنا ہے تو وہاں وہ کھینچتے نہیں ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ آواز سے مانوس نہیں ہے صحیح طریقے سے, ان کے ذہن میں آواز بیٹھی نہیں ہے. تو ہم اگر آواز سے اگر مانوس ہو جائیں تو وہ علامت کہیں بھی آئے گی, ہم اس کو اس کی صحیح آواز کے ساتھ پڑھیں گے. فتحے کی آواز ہے ا, کسرے کی آواز ای, زیر کی آواز جو ہے وہ کچھ لوگ ای پڑھتے ہیں کچھ لوگ اے پڑھتے ہیں, اور یہ ایک قوموں اور ملتوں میں ایک فرق کا ذریعہ بھی بنا لیا لوگوں نے, ایسا نہیں ہے بالکل. اصل میں عربی لہجہ ای ہے, ای نہیں, ای عربی لہجہ کسرے اور زیر کو پڑھنے کا جو وہ ای ہے. بہرحال ہمیں رسول خدا کی حدیث بھی کہ فقر القرآن بالحان العرب و اسواتحا, قرآن مجید کی تلاوت کرو قرآت کرو عربی لحن میں اور عربی آواز میں, یعنی ہمیں ایک تو لہن عربی کا صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح ادائیگی کے ساتھ, صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ, ایک تو اس کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ عربی لہجے میں بھی ہم اس کے قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہمارا اردو لہجہ ہے, ہم زیر کو اے پڑھتے ہیں, لیکن عربی لہجہ کیا ہے, عربی لہن کیا ہے, عربی صوت کیا ہے, زیر کو ای پڑھتے ہیں, جو یہ ہے. ہندی میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہاں لکھ دیا, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں. تو زیر کی آواز یعنی جو کسرہ ہے اس کی آواز ای, اور پیش جو ضمہ ہے اردو میں ہم اسے پیش کہتے ہیں, پیش جو سامنے رہے اس کی آواز او ہے. او اور او میں فرق ہے, او کھینچ کر پڑھتے ہیں. اس کا دوسرے انشاءاللہ اس کے بعد کی جو تین علامتیں ہیں وہ اس میں اس کو بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. ایک اور امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتاتے چلیں وہ ضروری ہے, میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ پانچ جلسے ہیں جن کے بعد ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت سیکھ سکتا ہے. پہلا دن جو تھا ہمارا انٹروڈکشن کا تھا, اس کے بعد سے جو دوسرے دن سے ہمارا درس شروع ہوا اس کی آج یہ گویا چوتھی کڑی ہے, انشاءاللہ کل اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی, جس کے بعد خود آپ اپنا اندازہ اپنا جائزہ خود لیں. اور آج جو باتیں آپ کو پیش کر رہے ہیں, آج جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں, آج کے بعد آپ جائیے خود جب آپ کو وقت ملے قرآن مجید کھولیے اور جن چیزوں سے آپ آشنا ہو چکے ہیں اپنا ٹیسٹ خود لیجیے. سب سے پہلے آپ قرآن کھول کر حروف کو دیکھیے آپ پہچان پاتے ہیں کہ نہیں. اگر حروف کو آپ نہیں پہچان پاتے ہیں تو آپ جا کے حروف کی پریکٹس کیجئے. حروف کی پریکٹس چار پانچ مرتبہ لکھیے لکھنے کے بعد, تاکہ حروف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. میں اسمال لیٹر بھی ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو پہلے بتا چکا ہوں, لیکن کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اسمال لیٹر کا ہونا ضروری ہے. اچھا, ایک اہم نقطہ یہ تین آوازوں کے لیے بتاتا چلوں, ا ای او کے لیے, کہ یہ علامتیں کیپیٹل لیٹر اور اسمال لیٹر دونوں ہی حروف پہ آتی ہیں. ا ई ऊ, ये स्मॉल लेटर पे भी आती हैं और कैपिटल लेटर पे भी आती हैं, लेकिन कुछ अलामतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर हरूफ पे आती हैं, वो कैपिटल लेटर पे नहीं आती हैं, वो मैं आपकी खदमत में अभी इसके बाद पेश करूँगा। तो अ की आवाज़, अब मैंने अर्ज़ किया था कि अ फतहा यानी अ, ये जिस हर्फ पे भी आएगा वो आ के साथ पढ़ा जाएगा। अब मैं अलामत लगाता हूँ और आप खुद इसका अपना इम्तिहान खुद लीजिए। अ ब त स ह ख द ज र ज स श स व त व अ ग स क क ल म न व ह य। फतह की आवाज़ जिस हर्फ पे भी आएगी तो वो आ की आवाज़ से पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई कुरानी एग्जांपल यहाँ लिखना चाहें कुरान मजीद से और कोई दूसरा एग्जांपल नहीं, और आप ख़ुद अंदाज़ा लीजिए, अंदाज़ा लगाइए आप कि अब आप कुरान मजीद की तिलावत आप कर सकते हैं, किस अंदाज़ में करेंगे? ये कुरानी मिसाल है, क त ब, क त ब, क त ब। याद रखिएगा एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा, एक कानून, एक तरीक़ा है, एक मसलन एक आसान तरीक़ा है, वो लोग जो कुरान मजीद की तिलावत जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते उनके लिए भी। अगर कोई शख्स अपनी तिलावत, जो लोग जानते हैं वो अपनी तिलावत और क़रात को सही करना चाहता है और ख़ताओं से महफूज रखना चाहता है, वो सिर्फ़ एक हफ़्ते कंटिन्यूसली, और बेहतर ये कि दो हफ़्ते, अगर वो हर रोज़ 10 मिनट यानी 1 से 2 सफ़े अगर इस अंदाज़ में पढ़ ले, किस अंदाज़ में? सेलेबल फॉर्म में, यानी तोड़ तोड़ कर जुदा जुदा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दें आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, ये हम सूरह अलहम्द इस तरह पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स कुरान मजीद की आयात को देख के दो हफ़्ते लगातार हर रोज़ कम से कम 2 सफ़े पढ़े तो उसकी उसके बाद वो अपनी तिलावत में ख़ुद ब खुद इम्प्रूवमेंट महसूस कर सकता है। क्या है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी हर लफ्ज़ पर, हर लेटर पर, हर हर्फ पे रुक रुक के एक एक सेकंड का, एक एक मिली सेकंड भी क्यों ना हो उसका पॉज लेके अगर वो पढ़ता है, रुक रुक के पढ़ता है। आमतौर से हम लोग तिलावत करते हैं रवानी के साथ पढ़ते हैं, इसलिए कभी ख़ता भी होती है, कभी गलती भी होती है, कभी सही कभी गलत पढ़ लेते हैं। अलबत्ता वो लोग जो सही पढ़ते हैं वो मुखातब नहीं है हमारे, वो लोग जिनको ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है तिलावत में, और कभी कभी मफहूम भी बदल जाता है अगर इंसान सही आयात की एराब के साथ सही तिलावत ना करे। तो ये तरीक़ा जो तोड़ तोड़ के जुदा जुदा हरूफ को अदा करना, ये बेहतरीन तरीक़ा अपनी क़रात को सही करने का। लिहाजा वो लोग जो इस नहज पे कुरान मजीद की तिलावत सीख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, मेरी उनको उनसे गुजारिश, उनसे रिक्वेस्ट, उनको नसीहत भी यही है कि जब तक बाकायदा तौर पे रवानी उनकी ना आ जाए वो आयात को इसी तरह तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे क त ब, एक तरीक़ा इसके पढ़ने का कतबा, नो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि किस तरह क त ब। दूसरी मिसाल आप ले लें कुरान मजीद से, क त ल, क त ल, ये कुरान मजीद की दूसरी मिसाल है। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं, आप अपना जायज़ा गोई, अपना इम्तिहान ख़ुद से लीजिए, कुरान मजीद की आयात को उठाइए, कुरान मजीद को खोलिए और वो हरूफ के जिनके ऊपर फतहा लगा है उनको आप पढ़िए। फतह की आवाज़ क्या? अ, जिस हर्फ पे भी फतहा लगा हो, ज़बर लगा हो, वो आ के साथ पढ़ा जाएगा। उसके बाद ज़ेर है, ज़ेर की यानी कसरा, कसरे की आवाज़ क्या है? ई, जिस हर्फ के नीचे भी ज़ेर लगा हो उसको ई के साथ पढ़ेंगे। आप देख लें, ई बी ती सी जी ही खी दी जी री जी सी शी सी, यी तक आप आखिर तक इसको इसी तरह, हर वो हर्फ के जिसके नीचे ज़ेर लगा हो उसको हम ई की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। जिस तरह ज़बर लगा हो तो अ की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, ज़ेर लगा हो तो ई की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, लेकिन एक्सटेंड नहीं करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा खींच कर नहीं पढ़ेंगे, ई नहीं, गलत है, बल्कि ई की आवाज़ जो सादा आसान आवाज़ है ई की आवाज़ से हम पढ़ेंगे। अब हम एक ऐसी मिसाल आपको कुरान मजीद से ऐसी मिसालें पेश करें जिसमें या तो सिर्फ ज़ेर हो या ज़ेर और ज़बर दोनों मिला हो, ताकि जिनकी शनाख्त आसान हो आपके लिए। मिसाल के तौर पर सिर्फ ज़ेर वाली मिसाल आप देखें कुरान मजीद में, ई बी ली, कुरान में आयत है अफला यंवरून इलल इबली कैफा खुलिकत। तो ए बी ली, ए बी ली, ए बी ली। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए, अगर इस अलामत से आप आशना हो गए तो आप ख़ुद कुरान मजीद से मिसाल निकाल कर आप उसकी तिलावत कर सकते हैं, ए बी ली। या एक और एग्जांपल दें, यहाँ इसको हम रब कर सकते हैं क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। हा सी बा, र मी या। अब आप पेश की आवाज़ क्या है, जिसके ऊपर पेश हो उसकी आवाज़ होगी ऊ, किसी हर्फ पे भी पेश आएगा वो ऊ की आवाज़ से पढ़ा जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ ऊ, देखिए ऊ, बू, तू, सु, जू, हु, खु, दू, जू, रू, जू, सु, शु, सु, यू तक, यानी ये पे पेश आएगा तो यू पढ़ा जाएगा। यू नहीं, यू जैसे ऊ, ऊ, यू, हर हर्फ कि जिसके ऊपर पेश लगा हो वो ऊ की आवाज़ से पढ़ा जाएगा। जिस तरह ज़बर लगा हो तो आ की आवाज़ से, ज़ेर लगा हो तो ई की आवाज़ से, पेश लगा हो तो ऊ की आवाज़ से। ये तीन अलामतें बेसिक और बुनियादी अलामतें, ये वो अलामतें जो कैपिटल लेटर पे भी आती हैं और स्मॉल लेटर पे भी आती हैं। मैं ज़म्मे और पेश की भी आपकी खिदमत में कुरान से दो तीन मिसालें पेश कर दूँ, उसके बाद दूसरी अलामतें जो तीन बेसिक और बुनियादी अलामतें उसको आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ज़म्मे की मिसाल देखें आप, अब ये मिसाल है वो कुरान की कि जिसमें फतहा और ज़म्मा दोनों ही मिला हुआ है। आप देखिए मिसाल कुतिला, कुतिला। मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, पढ़ना हमें एग्जांपल्स को, मिसालों को मिला के नहीं, हत्ता जब हम तौफीक हो हमें कुरान मजीद हम पढ़ने भी लगे तो हम कम से कम कुछ दिनों तक, जब तक हमारी बाकायदा तौर पे रवानी तिलावत में नहीं आ जाती, हम अलग अलग यानि तोड़ तोड़ कर जुदा जुदा हरूफ को, हर हर्फ को, हर बहर्फ हम उसकी तिलावत करेंगे ताकि मुकम्मल तौर पर हम उस पर मुसल्लत हो जाएँ, हमारी गिरफ्त पूरी तौर पर आ जाए। कुतिला, कुतिला। या मिसाल के तौर पे आप इस मिसाल को देखें, कुतिमा, कुतिमा, कुतिमा। अब इसमें पेश भी है, ज़म्मा भी है, कसरा भी है, ज़ेर भी है और फतहा भी है, ज़बर भी है। फिर से एक बार मैं बता दूँ, फतहे की आवाज़ है अ, कसरे की आवाज़ है ई और ज़म्मे की आवाज़ है ओ। जिस हर्फ पे भी फतहा आएगा वो अ के साथ पढ़ा जाएगा, जिस हर्फ के ऊपर कसरा आएगा वो ई के साथ पढ़ा जाएगा, जिस हर्फ के ऊपर ज़म्मा आएगा वो ओ के साथ पढ़ा जाएगा। दूसरी बात ये कि ये तीन अलामतें वो अलामतें जो बेसिक और बुनियादी अलामतें हैं, और कैपिटल और स्मॉल, बड़े और छोटे दोनों ही हरूफ पे ये अलामतें आती हैं। लेकिन अब जो तीन अलामतें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल लेटर पर और छोटे हरूफ पर आती हैं, उनकी तरफ आप तवज्जो कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि वो तीन अलामतें जो बेसिक और बुनियादी अलामतें फ़तहा, कसरा, वम्मा, अ, ई, ओ, ये वो तीन अलामतें हैं जो सबसे बेसिक और बुनियादी अलामतें हैं। इनके बाद जो दूसरी तीन अलामतें उनको मद्दी अलामतें कहा जाता है, मद्दी आवाज़ें हैं वो। मद यानी अरबी में खींचना, एक्सटेंड करना, ज़रा सा किसी को खींच कर अदा करना, मद करना। तो अब आप देखें, हमने फतह के लिए कहा था उसकी आवाज़ अ है, लेकिन इसी फतह को हमें आ में बदलना है, अगर यानी इसको हमें इसमें बदलना है अगर, ठीक है। तो ये जो आवाज़ इसकी थी, अब जब ये आ गया, एक मात्रा आ गई इसमें, तो इसकी आवाज़ आ की हो जाएगी, अ आ, या मिसाल के तौर पे ई, ठीक है, ये हो गया ई, या मिसाल के तौर पे ऊ, ये हो गया ऊ। यानी हम इसी आवाज़ को ज़रा सा अगर खींच के अदा करना चाहते हैं तो उनकी अलामत में ज़रा सा इजाफा होगा, उनकी आवाज़ में फ़र्क आ जाएगा। अब अरबी में हमको अ की आवाज़ को आ में अगर बदलना है तो सिंपल एक तरीक़ा है। सबसे पहले हम अलिफ़ से लेकर ये तक हम उन पर ज़बर लगाएंगे तो अ की आवाज़ हो जाएगी, अ, ब, त, थ, ज, ह, ख। हम एक बात और आपको बताते चलें, अगर इस सबक को किसी ने समझ लिया तो इसके बाद ऑलमोस्ट 45-50% कुरान मजीद के हरूफ को और उनकी आयात को इंसान पढ़ सकता है। बच जाते हैं 50%, वो दूसरी जो चंद अलामतें उनको सीखने के बाद भी इंसान 50 यानि और दूसरा आधा हिस्सा जो उसकी भी तिलावत सीख सकता है। आज इन अलामतों पर खसूसी तवज्जो कीजिएगा। तो हम अलिफ से लेके ये तक अगर हम ज़बर लगाएंगे तो इनकी आवाज़ हो जाएगी अ, 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 ब, त, स, ज, ह, ख, द, ज, र, ज, स, श, स, व, त, व, अ, ग, फ, क, क, ल, म, न, व, ह, य। अब हम इसी अ की आवाज़ को आ में अगर बदलना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीक़ा है कि हम इसके बाद एक अलिफ का इजाफा कर दें। तो अ की आवाज़ हो जाएगी आ, बा, ता, सा, जा, हा, खा, मिसाल के तौर पे का, मिसाल के तौर पे ला, ला, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, अरबी में कहते हैं ना, हमारा कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला ये यही वाला ला है, ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। जैसे आप नाम में आपने सीखा ता, तो वो अलिफ के साथ है ता। तो अ की आवाज़ को अगर हम आ में बदलना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीका क्या है, हम फतह के बाद जो है एक अलिफ का इजाफा कर देंगे तो वही अ की आवाज़ बन जाएगी आ। अब कहीं भी अलिफ के साथ ज़बर के बाद अगर अलिफ आता है किसी भी हर्फ के ऊपर तो वो अ की आवाज़ को हम आ के साथ, यानी फिर उसको हम आ नहीं पढ़ेंगे बल्कि आ पढ़ेंगे। एक चीज़ और कुरान मजीद में अक्सर नज़र आती है या अरबी तहरीर में कि कभी कभी बसा औक़ात ये जो अलिफ होता है वो ज़बर के बग़ैर भी लिखा जाता है लेकिन पूरा नहीं लिखा जाता है, कभी ये छोटा सा अलिफ लिखा जाता है, यानी एक तो अलिफ इतना बड़ा है, कभी कभी हर्फ के ऊपर छोटा सा अलिफ लिख देते हैं। तो ये छोटा सा जो अलिफ है इसकी भी आवाज़ वही होगी कि जो इस अलिफ की आवाज़ है, आ की आवाज़ पढ़ेंगे। जैसे अल्लाह हो तो अल्लाह आपने देखा होगा कि तजदीद के ऊपर एक छोटा सा अलिफ लिखते हैं, उसको इस तरह लिखते हैं। अब ये तजदीद का सबक इंशाल्लाह जब आइंदा पेश करेंगे तो उसमें बात वाज़ह होगी। ये छोटा अलिफ, तो ये छोटा अलिफ जो है इसकी भी आवाज़ वही होगी जो इस अलिफ की आवाज़ होगी। ऐसा नहीं है कि आवाज़ में दोनों के डिफरेंस हो, आवाज़ में दोनों के फ़र्क हो। अब देखें आप कुरान के एग्जांपल्स को, आप देखें कुरानी मिसालें देखें तो आपके लिए आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस कदर कुरान मजीद की आयत से मानूस हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर قال, अब आप देखें यहाँ है काफ, उसके ऊपर क्या है फतहा, आवाज़ क्या बनी क, उसको हम का में बदलना चाहते हैं तो हमने लगा दिया इसके ऊपर एक अलिफ, ये हो गया का। उसके बाद है लाम, लाम के ऊपर क्या है फतहा, लाम पे फतहा अगर हो, फतह की आवाज़ क्या है अ, قال। या मिसाल के तो दूसरी मिसाल मैंने आपको दी, ये ये क्या बना? या अब ये देखें, काफ के ऊपर फतहा लगा तो हो गया क, लेकिन इसके बाद अलिफ लगाएंगे तो हो जाएगा का। कातिबो, ये पे फतहा लगा हो या किसी भी हर्फ पे फतहा लगा हो उसके बाद अलिफ आ जाए तो वो छोटी आवाज़ नहीं बल्कि खिंची आवाज़ होगी, मद्दी आवाज़ बन जाएगी। या का रा ला इ ला हा। इ ला हा, मैंने कहा था ना ये छोटा अलिफ जो है वो अलिफ उसकी आवाज में भी कोई फर्क नहीं होगा, वही होगी। इ ला हा, इ ला हा। तो ये एक मद्दी आवाज। मैंने क्या अर्ज किया कि जिस तरह अ की आवाज पे अलिफ लगा दे तो वो आ बन जाता है, इसी तरह अगर किसी हर्फ के नीचे जेर लगाओ तो उसकी आवाज ई होगी। मिसाल के तौर पर ई बी ती सी जी ही खी। दाल के नीचे आप देखें, दी जी री जी सी शी सी। मिसाल के तौर पे फी। अब इसी ई की आवाज़ को हमें मज़ीद खींच के अदा करना है, मज़ीद एक्सटेंड करना है, इसकी आवाज़ को मद्दी आवाज़ बनाना है। उसका आसान तरीका क्या, उसके बाद हम एक ये लगा देंगे अरबी में, दाल के नीचे जेर उसके बाद ये दी री री जी सी शी सी की ली मी नी वी ही यी। जिस हर्फ के नीचे भी जेर लगा हो और जेर के बाद ये हो तो उसकी आवाज़ ई होगी। कुरानी एग्जाम्पल्स अभी आपकी खदमत में पेश करेंगे, आपके लिए नुमाया हो जाएगी, बात वाज़ह हो जाएगी। तो अ की आवाज़ को हम अलिफ लगा के आ बनाते हैं, ई की आवाज़ को हम जेर के बाद अब ये लगा देंगे तो उसकी आवाज़ ई की हो जाएगी। इसकी मिसाल आप देख लें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर जो है एक सूरा जो हमेशा पढ़ते हैं उसकी सबसे पहली मिसाल रा ही मे, रा ही मे। देखिए रा इस पे फतह है, इसको अ हे के नीचे जेर है ही, उसके बाद ये है तो ही रही मे, रही मे। अच्छा एक बात जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अर्ज करूंगा आपको बताऊंगा, ब्रैकेट में इस बात को जहन में रखिएगा तो वो अभी जहन नशीन रह भी सकती है। ये बात तो खैर वाजह हो गई कि अगर जेर के बाद ये आ जाए तो आवाज़ ई से ई में बदल जाती है, हम उसको एक्सटेंड करके और मद्दी आवाज़ में बदलेंगे। हमने अर्ज़ किया था कि कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी मुतअद्दिद शक्लें हैं स्मॉल लेटर में, उनमें से वो हर्फ के जिसकी मुतअद्दिद शक्लें उनमें से एक है मीम। मीम को जब हम अलग लिखते हैं तो वो यूँ लिखा जाता है, लेकिन मीम को जब हम सबसे इब्तिदा में अगर लिखेंगे तो मीम यूँ लिखा जाएगा, लेकिन यही मीम अगर बीच में आएगा तो वो यूँ लिखा जाए, यूँ भी लिखा जाता है, यूँ भी लिखा जाता है, यानी ऊपर से भी आता है। और जब हम आखिर में लिखेंगे तो उसके लिख एक तरीक़ा ये है और एक तरीक़ा ये भी है। तो मीम तीन तरीक़े से लिखा जाता है, इब्तिदा में उसकी शक्ल ये होगी, बीच में ये होगी और आखिर में ये शक्ल होगी मीम की। तो यहाँ देखें जो वो आखिरी की शक्ल है मीम की, ऐन के साथ भी यही है, ऐन इब्तिदा में यूँ लिखा जाता है, दरमियान में यूँ लिखा जाता है और आखिर में उसे यूँ लिखते हैं। इब्तिदा में यूँ, दरमियान में यूँ और आखिर में उसे यूँ लिखेंगे। अच्छा जो ऐन की सूरत है वही गैन की, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। तो यहाँ तक आपके जहन में बात रह गई, क्या बात हुई कि जब कसरा के कसरे के बाद जेर के बाद अगर ये आ जाए तो उसकी आवाज़ ई से ई हो जाएगी। एक मिसाल थी रही की रहीम, दूसरी मिसाल कुरान मजीद की आप देखें, फी फे के नीचे जेर, उसके बाद ये आ गया फी। अच्छा, अगर ये समझ गए तो तीसरी अलामत को समझना बहुत आसान है। जिस हर्फ पे भी पेश लगा हो उसकी आवाज़ होगी उ, उ, वू, तू। मिसाल के तौर पे कू, मू, नू, वू, हु, यू। जिस हर्फ पे भी पेश लगा हो उसकी आवाज़ होगी यू, लेकिन पेश के बाद अगर वाव आ जाता है तो उसकी आवाज़ हो जाएगी यू, ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, हू, दू। यानी हम खींच के पढ़ेंगे, जैसे का लू। मिसाल आप देख लें कुरान मजीद की, का लू, का लू, या रसूलु, रसूलु। अब आप देखें कालु रसूलु, या नूहु, 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 रहीमु, नूहु, लूतु, कालु र सूलु, आ, ई, ऊ। इन तीन अलामतों को मद्दी अलामतें कहते हैं। इनकी खासियत ये कि सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल लेटर हरूफ पे आते हैं, कैपिटल लेटर हरूफ पे नहीं आते हैं। अब हमारा इंशाल्लाह एक प्रोग्राम, एक दर्स और बचा है, जिसमें जो बाकी चंद अहम बातें हैं, गोया तीन अलामतें प्लस टू पाँच अलामतें हैं, वो इंशाल्लाह आइंदा के सबक में आपकी खिदमत पे पेश की जाएंगी। अगर इनको कोई फॉलो कर ले उसके बाद उसके लिए कुरान मजीद की तिलावत आसान हो जाएगी। बारगाह खुदा में दुआ है कि खुदा हमें तौफीक अता करें कि हम इन बातों को समझ सकें और ये मुकदमा बने कुरान मजीद की आयत को पढ़ने का और उन्हें समझने का। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।